लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि अपनी अस्मिता और अस्तित्व के खो जाने का खतरा उठा रहे देशज लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर, फादर संजय एक्का और सिस्टर मार्गरेट मिंच। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। जो तुझे त्याग देते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जो तेरे साथ विश्वासघात करते हैं तू उनका विनाश करता है। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है, मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 73वें भजन के अंतिम दो पद। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत विगत सप्ताह हमने इन पदों की व्याख्या की थी। इस भजन में प्रभु ईश्वर पर संदेह और बाद में फिर उनमें विश्वास की अभिव्यक्ति मिलती है। निराशाओं के बावजूद भजनकार इस बात के प्रति सचेत रहता है कि ईश्वर ही उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपनी महिमा में ले चलेंगे, क्योंकि ईश्वर का प्रेम असीम है। कहता है, फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ और तू मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अपने परामर्श से मेरा पथ प्रदर्शन करता है और बाद में मुझे अपनी महिमा में ले चलेगा। भजनकार स्वतः को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है और प्रभु ईश्वर को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है। कहता है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। श्रोताओं, जीवन जैसा है उसे प्रभु ईश्वर की इच्छा मानकर उसी रूप में स्वीकार कर लेना सरल नहीं होता, किंतु जो नहीं है उसकी चाह रखना, उसके लिए विलाप करते रहना अथवा अनवरत शिकायत करते रहना भी उचित बात नहीं है। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, वह एक कमजोर व्यक्ति बन जाता है, उसका विश्वास डगमगा जाता है, उसमें अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अस्तु, प्रभु की कृपा से जो कुछ हमें मिला है उसे हम सहर्ष स्वीकार करें तथा बात बात पर शिकायत करने से दूर रहें, तभी हम अपने जीवन में सुख पा सकेंगे और अन्यों के लिए सुख और आनंद का स्रोत बन सकेंगे। इसीलिए भजनकार 73वें भजन के अंतिम दो पदों में कहता है कि जो ईश्वर का परित्याग करते हैं उनका विनाश अवश्यम भावी है। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसका यह विश्वास अटल है कि ईश्वर के साथ रहने में ही उसका कल्याण है और इसीलिए वह प्रभु के सब कार्यों का बखान करने के लिए तत्पर रहता है। वस्तुतः श्रोताओं, जो लोग ईश्वर से दूर रहते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, उनमें विश्वास नहीं करते, वे खुद अपने विनाश का कारण बनते हैं। भजनकार कहता है कि स्वेच्छा से वे स्वतः को ईश्वर से अलग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप अनंत जीवन से भी अलग हो जाते हैं। किंतु मैं जानता हूं कि ईश्वर के साथ रहने में ही मेरा कल्याण है, और इसीलिए मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूं।
प्रभु हम आए तेरे द्वार,
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 दर्शन करने तेरे द्वार,
दर्शन करने तेरे द्वार,
प्रभु हम आए तेरे द्वार।
और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन पर दृष्टिपात करें। इस भजन में भक्त समुदाय मंदिर के विनाश पर विलाप करता है। श्रोताओं, निर्वासन से इज़राइल आने के बाद से यहूदी जाति के लोग प्रभु के आदर में उपवास एवं व्रत रखा करते थे। अपने बीच प्रभु ईश्वर की उपस्थिति का ध्यान रखते हुए वे सामुदायिक रूप से प्रार्थना समारोहों का आयोजन किया करते थे तथा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। इन्हीं अवसरों पर उन्होंने राजा नबूखदनज़र के शासनकाल में जेरूसलम के मंदिर के विनाश पर विलाप किया, जिसे स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन में अभिव्यक्ति मिली। बाइबल पंडितों के अनुसार दुष्ट राजा नबूखदनज़र द्वारा लगभग 587 ईसा पूर्व जेरूसलम के मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। उस युग में जो विनाश हुआ वह दमिश्क अथवा निनिवे का विनाश नहीं था, बल्कि स्वयं ईश्वर द्वारा चुने हुए शहर का विनाश था। प्रभु ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि जेरूसलम शहर ही राष्ट्रों का मिलन बिंदु होगा। यही ईश प्रजा का प्रतिज्ञात शहर था और यहीं पर ईश्वर की मुक्ति योजना का संपादन भी निश्चित था, जैसा कि हम नबी ईसाया के ग्रंथ के दूसरे अध्याय के प्रथम 3 पदों में पढ़ते हैं। इनमें जेरूसलम और यूदा के विषय में आमोस के पुत्र ईसाया द्वारा देखे गए दिव्य दृश्य का वर्णन निहित है। लिखा है, अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे, असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें, क्योंकि सियों से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और जेरूसलम से प्रभु की वाणी। इस प्रकार श्रोताओं, हम देखते हैं कि इजरायली जाति के लिए जेरूसलम शहर उसका संदर्भ बिंदु था। जेरूसलम शहर ईश्वर के साथ वार्ता का पवित्र स्थल था, वह सभी राष्ट्रों का केंद्र बिंदु था, और इसलिए इस शहर के मंदिर के विनाश पर वे विलाप कर रहे थे। स्तोत्र ग्रंथ के 74वें भजन के प्रथम 4 पदों में भक्त समुदाय के रुदन को अभिव्यक्ति मिली है। ये पद इस प्रकार हैं, ईश्वर तूने क्यों हमें सदा के लिए त्याग दिया है, तेरा क्रोध क्यों अपनी चरागाह की भेड़ों पर बना हुआ है, अपनी प्रजा को याद कर जिसे तूने प्राचीन काल में अर्जित किया, जिसका तूने उद्धार किया, उस वंश को याद कर जिसे तूने विरासत के रूप में अपनाया था, सियों के पर्वत को जिसे तूने अपना निवास स्थान बनाया था, इन पुराने खंडहरों पर दया दृष्टि कर, शत्रु ने पवित्र मंदिर को उजाड़ दिया, तेरे बैरियों ने तेरे प्रार्थना गृह में शोर मचाया और वहां अपने विजयी झंडे फहराए। श्रोताओ, इन पदों में ईश प्रजा विलाप करते हुए प्रभु ईश्वर को पुकारती है, क्योंकि जेरूसलम के उजड़ जाने पर भी, उसके मंदिर के विनाश के बाद भी, उसे ईश्वर की प्रतिज्ञा याद थी, जिसमें ईसाया के ग्रंथ के 51वें अध्याय के 16वें पद में विश्व मंडल के प्रभु कहते हैं, मैंने अपने शब्दों को तुम्हारे मुंह में रखा और तुमको अपने हाथ की छाया में छिपाया है। मैंने आकाश को स्थापित किया, पृथ्वी की नींव डाली और सियों से कहा, तुम ही मेरी प्रजा हो।
वंदे